बताइए क्या कह रहा था मैं? हाँ बताइए मैं क्या कह रहा था, कोई एक व्यक्ति बताइए। यस, तो वो आप लोग ना सब सो रहे हो, अभी जग जाओ। हाँ उत्तिष्ट था, जागृत था। तो अभी वो राधा रानी कृष्ण को बोल रही है कि इसको कुछ बख्शीश देना चाहिए। हाँ अभी साइलेंट हो जाओ। तो फिर वो कृष्ण कहते हैं जरूर जरूर देना चाहिए, क्या देना चाहिए? तो राधा रानी कहते हैं तुमने जो अंगरखा पहन के रखा है ना वो दे दो, बढ़िया सुंदर अंगरखा है, उसके लिए बहुत योग्य है। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, तो मेरे बाबा का दिया हुआ है, मैं थोड़ी दूंगा उसको, बाबा पूछेंगे शाम को मुझे अंगरखा कहाँ गया, मैं फिर दूंगा, भंगी को दे दिया मैंने, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे क्या तुम इतने आसक्त हो बाबा के, बाबा के पास तो और भी होंगे ना, इसमें क्या है? अरे इस भक्त को कौन बख्शीश देगा तुम्हारे सिवा, तुम्हारे लिए भक्ति कर, तुम्हारे नाम पुकार रहा है, हमारे दोनों का नाम पुकार रहा है, दे दो, इतना आसक्त मत दोनों भैया तुम, मतलब भैया नहीं बोलते सॉरी। दे दो इसको। तो कृष्ण जो मना करते नहीं दूंगा दे दूंगा। तो बाद में राधा रानी ना एकदम ऐसा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा नाराज हो जाती, मत दो तुम, जा मत दो, मैं दूंगी, ये मेरी शॉल है ना मैं दूंगी, मेरी मैया नहीं नाराज होगी मुझसे, मेरी मैया बहुत दयालु है, मैं मैया को समझा दूंगी, मैं मेरी शॉल दूंगी। तो राधा रानी का ये जो करुणा है ना ये कृष्ण को प्रकट करने से मना कर रहे हैं। कृष्ण की मति कैसी है, राधा रानी का गौरव होना चाहिए, इसलिए वो अपने आप को भी थोड़ा सा कंडेम करते हैं लेकिन राधा रानी का गौरव होना चाहिए। तो राधा रानी वो अपनी शॉल जो है ना वो निकालती है ऐसे और ऐसे फेंक देती है, नीचे छोड़ देती है इसको, जो नीचे है ना वो नीचे ही बिल्कुल बुहारी कर रहा है, तो शॉल जाती है, शॉल ऐसे जाके नीचे उसके शरीर पर गिर जाती है। शरीर पर जैसे ही वो शॉल गिरती है ना ये व्यक्ति ना कांपता है ऐसे, भाव विभोर होकर ऐसे कांप कांप कर बेहोश हो जाता है, आंखों से अश्रु बहते हैं, कंठ गदगद हो जाता है, रोमांच हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है और बेहोश हो जाता है। बस इतनी लीला है, ज्यादा बड़ी लीला नहीं है। अभी इसका जो विवरण है वो ऐसा है कि एक सुंदर ग्रंथ है, उसका नाम है राधा सुधा निधि। वो हमारे जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है ना उनके जो चाचा जी हैं प्रबोधानंद सरस्वती, उन्होंने इसको लिखा है। वो एक वृंदावन के एकदम फैनाटिक भक्त है, फैनाटिक मतलब जैसे एकदम पागल जैसे भक्त, उन्होंने वृंदावन महिमामृत लिखा है, बहुत सुंदर। क्या क्या लिखा है उसमें देखेंगे तो हम लोग पागल हो जाएंगे, ऐसा ऐसा कैसा लिख सकते हैं। एनीवेज, तो उन्होंने राधा रस सुधा निधि यानी राधा का जो प्रेम का रस है उसका जो अमृत है उसका निधि स्टॉक ट्रेजरी ऐसा एक ग्रंथ लिखा है, बहुत सुंदर। उसमें प्रथम श्लोक क्या लिखा है, यस्या वचनांचल खेलनोत्थ, मुझे पूरा अभी याद नहीं आ रहा है, थोड़ा याद करने में कमजोर हूँ लेकिन मुझे भाव उसका पता है पूरा। उसका भाव ये है कि वसनांचल यानी राधा रानी जो वसनांचल अपना वस्त्र पहनती है ना उसको वायुदेव जो है ना वायुदेव तो सब देवता लोग अपने अपने सेवा करते धाम में, जो सेवा बाकी जगह करते हैं उससे भी बहुत उच्च सेवा धाम में करते हैं, भगवान को रिझाने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो जाए इसलिए कृपा प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। और वायुदेव क्या करते हैं, यमुना किनारे जो कमल खिल रहे हैं उस कमल की जो पुकेसर है सुगंधी पुकेसर पोलेंस वैसे ना ऊपर 4 फीट तक हवा में रहते हैं, बाष्प में 4 फीट तक बाष्प रहता है, उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होता है और ठंडक भी होती है उसके अंदर, और उसमें सारी वो जो पोलेंस हैं सुगंधित वो रहते हैं, तो वो हवा आती है उस ठंडक को लेती है उस सुगंध को लेती है और मंद 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 बहते हुए कृष्ण की ओर जाती है और राधा कृष्ण के शरीर को स्पर्श करके उनको आनंद देती है। तो क्या 3 गुण है हवा में, शीतलता मंदता और सुगंध, ये 3 लेकर वायुदेव जाते हैं और वायुदेव अपनी दिशा से जाते हैं ना, एक दिशा पकड़ते हैं, राधा रानी की खोज करते जाते हैं और राधा रानी के वस्त्र को वसनांचल को स्पर्श करते हैं और वायुदेव वायु है ना वहां से परावर्तित होती है, द एयर रिफ्लेक्ट फ्रॉम द क्लॉथ ऑफ राधा रानी आफ्टर टचिंग द क्लॉथ, और वो जो परावर्तित वायु है जो वहां पर स्पर्श करके लौट के आ रही है वो जिस दिशा से आ रही है उस दिशा को कृष्ण प्रणाम करते हैं, बोलो उस वायु को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। वो वायु जिस दिशा से आ रही है उस दिशा को विषभानु भुवे दिशेपि, उस दिशा को कृष्ण प्रणाम करते हैं। तो वो दिशा उस वायु की है, वो वायु उस वस्त्र को स्पर्श कर रहा है जिसके लिए वो प्रणाम किया जा रहा है। तो वो वस्त्र जो है जिसके केवल स्पर्श करके आने वाली हवा को कृष्ण प्रणाम करते हैं, वो वस्त्र ही अगर भंगी पर गिर गया तो उसमें क्या अवस्था होगी, सोचो आप। ऐसी कृपा है बरसाने में। राधा रानी के दरबार में सब दुख दर्द मिटाए जाते हैं, बेसहारों को सहारा प्राप्त होता है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। और एक सुंदर भजन है राधा नाम के विषय में, तो राधा नाम की महिमा होनी चाहिए, क्योंकि शिवजी महाराज ने भी राधा नाम की महिमा ही सुनाई थी रोते हुए कृष्ण को, तभी वो चुप हो गए थे, है ना। तो सिमरन कर राधे राधे तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं, राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे, तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे। तू सिमरन कर राधे राधे तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। धावती ससंभ्रमः, राधा रानी का नाम उच्चारण करने वाले व्यक्ति के पीछे कृष्ण भगवान पागल से होकर, भ्रमित से होकर, मोहित से होकर पीछे पीछे ससंभ्रमः भागते हैं उसके पीछे। पद्म पुराण में लिखा है रा और धा के नाम में कितनी शक्ति है। रा का उच्चारण करते ही अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, माता के गर्भ में मिला हुआ गर्भवास नष्ट हो जाता है, और धा का उच्चारण करते ही वैकुंठ प्राप्ति हो जाती है। और वो जिसके लिए पुकार रहे हैं वो व्यक्ति पागलों को तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है, कौन मेरी प्रियतमा का नाम ले रहा है। हम भी वही कहते हैं हरे हरे कृष्ण। तो राधा नाम में कितनी शक्ति है, कृष्ण को वश करने की शक्ति है उसके अंदर। कृष्ण का ध्यान जो आकर्षित करना बहुत मुश्किल है, उनके 20 नाखूनों से निकलने वाले अनंत किरणों में से एक किरण भी पकड़ना मुश्किल है तपियों को, ध्यानियों को और तपस्वियों को। राधा नाम बड़ा सुखदाई, राधा नाम बड़ा सुखदाई, राधा नाम, राधा नाम बड़ा सुखदाई, राधा नाम बड़ा सुखदाई। जैसे राधा रानी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, राधा रानी की कृपा के बिना हम कोई सेवा संपन्न नहीं कर सकते हैं कृष्ण के लिए। राधा की कृपा होगी, आशीर्वाद होगा, एम्पावरमेंट होगा, उनके द्वारा शक्ति प्राप्त होगी, तो ही हम कृष्ण की सेवा करने में समर्थ बनेंगे, कृष्ण को प्रसन्न करने में सफल बनेंगे। इसलिए राधा नाम कभी ना भूले, ब्रज में सब जगह वो संत ने लिख रखा है, श्री राधा कभी ना भूले, श्री राधा कभी ना भूले, राधा नाम कभी ना भूले। तो ऐसे नम्र भाव से राधा रानी के चरणों में अपने आप को समर्पित करके हम अपने आगे कथा बोलते हैं। समय जितना भी मिले उतना कम ही रहता है, लेकिन नंदगांव की एक कहानी मुझे आपको बतानी है किसी भी स्थिति में।